पृष्ठ संख्या 183। युद्ध का प्रारंभ तथा उसकी प्रारंभिक अवस्थाएं। जुलाई 1937 में उत्तरी चीन पर जापानी सेना के जिस भाग का नियंत्रण था, उसने उस प्रदेश पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का नवीन एवं साहसपूर्ण प्रयत्न किया। संभवतः सेनाध्यक्षों को यह आशा थी कि कम से कम कुछ समय तक इन आक्रामक कार्रवाइयों को उत्तरी चीन तक सीमित रखा जा सकेगा, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो वे इससे बड़े युद्ध के लिए भी तैयार थे। जापानी सेना जो कदम उठा रही थी, वह 1931 से 32 के मंचूरिया अभियान की दृष्टि से युक्तिसंगत थी। देशभक्त चीनी इस बात को कतई सहन करने को तैयार न थे कि उनके इन चीनी बहुसंख्यक उत्तर पूर्वी चीनी प्रदेशों को अस्थायी रूप से काटकर पृथक कर दिया जाए। मंचूरिया को अपने अधिकार में रखने के लिए जापान के लिए आवश्यक था कि या तो वह संपूर्ण चीन को पराजित करे या वहां पर ऐसी सरकार की स्थापना करवाए जो उसे सहयोग दे। किसी भी देशभक्त चीनी के लिए इन दोनों में से एक भी बात को स्वीकार करना संभव न था। कुछ समय के लिए उन्हें बल प्रयोग द्वारा आत्मसमर्पण के लिए बाधित करना तो संभव था, लेकिन वे वस्तुतः अधीनता की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते थे। सन 1937 की 7 जुलाई की रात को पिकिंग नगर के उपांत में जापानी तथा चीनी सेनाओं में मुठभेड़ हुई। जापानी सेनाएं 1901 के बॉक्सर के समझौते की शर्तों के अधीन अपने राजदूतावास की रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त थी। इस छोटी सी चिंगारी से भीषण संघर्ष का सूत्रपात हुआ। जापानियों ने मदद के लिए वहां पर बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त सैन्य दल भेजे। उन्होंने वहां से भीतरी मंगोलिया के सुयुआन प्रांत की ओर कूच किया तथा शांसी प्रांत को जीतने का प्रयत्न किया। ये कार्रवाइयाँ उत्तरी चीन में अपने अधिकृत प्रदेशों के विस्तार के लिए की गई थी, जिनका आंशिक उद्देश्य रूसियों की संभावित कार्रवाइयों को रोकना तथा शांसी और उनके समीपवर्ती सेंसी प्रांत के सशक्त चीनी साम्यवादी संगठनों पर नियंत्रण रखना था। इस संघर्ष को उत्तरी चीन तक ही सीमित न रखा जा सका। कई वर्षों से चीन में जो तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, वह इतना अधिक हो गया था तथा चीनी राष्ट्रवादी इतने अधिक क्षुब्ध हो चुके थे कि उत्तर में घटित इस घटना ने दोनों देशों के बीच बिना पूर्व घोषणा के बड़े पैमाने पर युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब इस विषय में किसी तरह के समझौते का कोई प्रश्न ही ना था। जापानियों के लिए इस युद्ध का परिणाम था साम्राज्य स्थापना या पूर्ण विध्वंस। इस संघर्ष में दोनों पक्षों का मुकाबला बराबर का न था। जापान स्पष्ट ही सैन्य दृष्टि से कहीं अधिक लाभप्रद स्थिति में था। जापानियों का समुद्र पर पूर्ण अधिकार था, जिससे वे जब चाहे समुद्री मार्ग से सैनिक लाकर चीन की नाकेबंदी कर सकते थे। उनके पास विशाल सुप्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्थल सेना थी, जिसका नियंत्रण सुयोग्य अधिकारियों के हाथ में था। इसके अलावा उनकी वायु सेना अत्यंत शक्तिशाली थी तथा उनकी उद्योग व्यवस्था पूर्वी एशिया में सबसे अधिक विकसित थी। इसके विपरीत चीनियों के पास असीम मानव शक्ति तो थी, लेकिन नौसेना का अभाव था तथा आधुनिक सैन्य युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने वाले उद्योग न थे। उनके पास थोड़े से विमान थे और एक बार उनके विनष्ट हो जाने पर दूसरे विमानों के निर्माण के लिए उनके पास साधन न थे। इसके अलावा उनके पास आधुनिक युद्ध प्रणाली में भली भांति प्रशिक्षित अधिकारी भी अत्यल्प संख्या में थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जापानियों ने शीघ्र ही अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तटवर्ती नगरों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन्होंने शांघाई, नानकिंग और हांगकांग शहरों स्थित यांगत्सी घाटी पर कब्जा कर लिया, जिसमें मध्य चीन को पश्चिमी चीन के साथ जोड़ने वाले दर्रों तक के प्रदेश सम्मिलित थे। उन्होंने अधिकांश रेलमार्ग पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने यांत्रिक उपस्करों तथा सुविकसित वायुसेना एवं नौसेना के द्वारा ऐसे सभी मुख्य स्थल और सुविधाएं प्राप्त कर ली जो इन साधनों से संभव थी। यहाँ पर संघर्ष के केवल सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलुओं की बाह्य रूपरेखा ही दी जाती है। शंघाई के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक भीषण युद्ध हुआ। चीनी सेना ने जापानियों का बहादुरी से डटकर मुकाबला किया, लेकिन शीघ्र ही उनकी वायुसेना परास्त हो गई और उनके चुनिंदा सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए। 8 नवंबर 1937 तक चीनियों ने शंघाई से पीछे हटना शुरू कर दिया था। 12 व 13 दिसंबर 1937 को चीन की राजधानी नानकिंग भी उनके हाथ से चली गई। वास्तुकला की दृष्टि से नानकिंग नए चीन का प्रतीक था। जापानियों द्वारा नानकिंग में युद्धबंदियों तथा निहत्थे नागरिकों पर किए गए अमानुषिक अत्याचारों ने सभ्य संसार को स्तंभित कर दिया। इससे चीनियों के मन में असंतोष की भावना और अधिक बढ़ी तथा जापानियों से बदला लेने की उनकी इच्छा और दृढ़ हुई। अपनी अवशिष्ट सेनाओं के साथ चीन की सरकार पश्चिम की ओर आ गई। सरकार ने हांगकाओ में अपना प्रधान कार्यालय स्थापित किया, जो अधिक दिन न टिक सका। 25 अक्टूबर 1938 को जापान ने हांगकाओ पर भी कब्जा कर लिया। चीनी पश्चिम में और अधिक पीछे की ओर हट गए तथा उन्होंने यांगत्सी घाटी के निचले और ऊपर के भागों को पृथक करने वाली तंग घाटी के पश्चिमी छोर पर स्थित चुंकिंग नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। जापानी सेनाएं इन तंग घाटियों में से होकर जाने का साहस शायद ही करती, क्योंकि इन प्रदेशों में जलपोत तथा सैनिक बहुत ही कठिनाई से तथा जान व माल की भारी क्षति उठाकर ही पहुंच सकते थे। अधिकांश जापानियों को आशा थी कि चीनियों का प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा और वे चीन में एक ऐसा प्रशासन स्थापित करने में सफल हो जाएंगे जो उनके साथ सहयोग करेगा। लेकिन जब इसके तुरंत पश्चात ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने नाकेबंदी और चीनियों को आतंकित करने वाले उपायों का आश्रय लिया। उन्होंने पहले ही अधिकांश चीनी रेलों पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि इनमें से अधिकांश रेलमार्ग यांगत्सी तथा पीली नदी के निचले भागों के मैदानों में स्थित थे। 21 अक्टूबर 1938 को हांगकाओ पर कब्जा करने से जापानी कैंटन तक बढ़ गए। नवंबर 1938 में उन्होंने हांगकाओ के ऊपर दक्षिण की ओर स्थित हो चाओ नगर पर कब्जा कर लिया तथा मार्च 1939 में क्यांगसी की राजधानी नानचांग को भी हस्तगत कर लिया। तटवर्ती हांगकाओ तथा बुचांग और योचाओ से कैंटन को सीधे जाने वाले रेलमार्ग के बीच स्थित नानचांग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। नवंबर 1939 में उन्होंने कैंटन के दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित समुद्र तटीय बंदरगाह पाखोई पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात फ्रांसीसी हिंद चीन तथा चीन के अनाधिकृत प्रदेशों के बीच यातायात में व्यवधान डालने के लिए वे भीतर की ओर नानिंग में प्रविष्ट हुए। जून 1940 में उन्होंने हांगकाओ के पश्चिम में तथा यांगत्सी नदी की तंग घाटी के निचले छोर पर स्थित इचांग शहर पर कब्जा किया। वायु शक्ति में चीन की ओर से किसी प्रकार का प्रतिरोध न होने के कारण उनके विमान समय समय पर चीनी शहरों पर बम वर्षा करते थे। जिन क्षेत्रों को जापानी अपने सैन्य बल से बस में रख सकते थे, वहां पर उन्होंने मंचूरिया की ही तरह सरकार की स्थापना कर दी। इन प्रशासनों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में सौंप गया जो जापान के साथ सहयोग करने को तत्पर थे। इस कार्य के लिए वे ऐसे बहुत ही कम चीनियों को आकर्षित कर सके जिनमें योग्यता एवं चारित्रिक दृढ़ता हो। राष्ट्रीय प्रशासन के संचालन के लिए उन्होंने वांग चिंगवी को राजी कर लिया। वांग सन्यात सेन का घनिष्ठ मित्र था और उसे अपना आध्यात्मिक शिष्य मानता था। चीन के प्रमुख दल कुओमिंतांग में उसका प्रमुख स्थान था और उसका कथन था कि वह सन्यात सेन के कार्यक्रमों का साकार रूप है। वह राष्ट्रवादी सरकार के केंद्र चुंकिंग में उच्च पदों पर कार्य कर चुका था, लेकिन बाद में उसने उसे छोड़ दिया। उसके विचार और इरादे कुछ मिले जुले थे। इनमें उसकी निजी महत्वाकांक्षाएं तथा चुंकिंग में अपने साथियों के साथ मनमुटाव की भावनाएं निहित थी। साथ ही उसकी यह दृढ़ धारणा थी कि चीन को विजेताओं के साथ शांति स्थापित कर लेनी चाहिए तथा उसे विश्वास था कि वह शत्रु को सफलतापूर्वक रास्ते पर ला सकता है तथा एक ऐसे शासन की स्थापना कर सकता है जो वास्तव में स्वाधीन होगा तथा साथ ही जापान के साथ मैत्रीपूर्ण भी होगा। 30 मार्च 1940 को जापान ने बड़ी धूमधाम के साथ नानकिंग में वांग चिंगवे की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी सरकार की पुनः स्थापना की घोषणा की। उन्होंने वांग को, जैसा कि उसका कहना है, पुरातन कुओमिंतांग दल के द्वारा चुनने का एक स्वांग भी रचा। अब जापान का कहना था कि उसने एक ऐसी चीनी राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना कर दी है जैसा कि वह चाहता था और जो उनके साथ मिलकर काम करेगी। आरंभ से ही यह सरकार एक ऐसे टूटे पौधे के समान थी जो केवल जापान के सहारे ही खड़ी थी।